मृत्यु सर्वहरश्च अहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्री वाक्यच नारीणाम स्मृति मेघा धृति क्षमा। स्त्रियों में मैं और प्राणी मात्रों में सबका हरण करने वाला मैं, सबका हरण करने वाली मौत और उत्पत्ति होने वाला उद्भव स्थान मैं हूँ चैतन्य, तथा स्त्री जाति में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा मैं हूँ। ये सात तो स्त्रीवाचक शब्द है, स्मृति मेधा धृति क्षमा। मृत्यु मैं हूँ भगवान कहते हैं। अगर मृत्यु ना होते, मृत्यु नहीं आता, मृत्यु से आप नफरत ना करो, मृत्यु रूपी परमात्मा का आलिंगन करो कि वाह जीवन जी के भी देख लिया तो अब मर के भी तू दिखाता है, वाह मृत्यु को आना है तो भले आओ, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर की स्मृतियों को, जीवन भर की स्मृतियों को, चिंताओं को हरने वाली, पुराने शरीर को हरने वाली है, पुरानी वासनाओं को हरने वाली है, शोक और मोह को हरने वाली, नया जीवन देने वाली भगवत कृपा है। वाह मृत्यु को इतना बुरा मत मानो, आसक्ति के कारण मृत्यु से भय होता है, वरना मृत्यु क्या है, एक पड़ाव है, शरीर बदलने का अवसर है। तो भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहराश्च अहम् उद्भवश्च भविष्यताम्। सबका हरण करने वाली मृत्यु और सबको उत्पन्न करने वाला उद्भव मैं हूँ। प्रीति करने योग्य तो सच्चिदानंद परमात्मा है, परमात्मा सत है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। मनुष्य मात्र रस का और शांति का पुजारी, भगवान रस स्वरूप है, भगवान शांत आत्मा है। ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है जो भगवत शांति से न पैदा होता, ऐसा कोई रस नहीं जो आत्मा से उसका संबंध न हो। कई प्रकार के रस हैं, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, व्यंजन रस, दर्शन रस, स्पर्श रस, गंध रस, कई रसे हैं, शब्द रस, अच्छे शब्द सुने रस आया, लेकिन अनुभव यही होता है। वीरता की बातें सुनी कानों ने, वीर रस अपने आत्मा, तो रस स्वरूप भगवान है, आपका आत्मा है, उस आत्मा में प्रीति हो जाए। तो कैसे होगी प्रीति, कि बुद्धि में एक बार ये बात जच जाए कि हमारी मांग का नाम है परमात्मा, हम रस और शांति चाहते हैं, जो रस स्वरूप और शांत स्वरूप है वो भगवान है, आत्मा है, जो सारे सामर्थ्यों का, सारे सद्गुणों का उद्गम स्थान। गुरु जब मंत्र देते हैं तो गुरु मंत्र हो जाता है वो शब्द, राम राम तो सब लोग बोलते सुनते हैं, झाड़ू लगाने वाले भी राम राम करते थे, कबीर जी ने सुन रखा था, लेकिन गुरु के द्वारा जब जपने की विधि मिली, कबीर जी लग गए तो बड़े सिद्ध पुरुष हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेव तो कई लोग बोलते हैं, कि नारद जी के द्वारा गुरु मंत्र होकर मिला और वो प्रीतिपूर्वक बजते गए तो अंतरात्मा से बुद्धि योग मिला, साकार भगवान के भी दर्शन हुए और निराकार तत्व का भी ज्ञान हुआ। गुरु मंत्र का अर्थ है जो हमें लघु ना रहने दे, छोटा ना रहने दे। लघु वही है जो बाहर की पराधीनता से रस लेता है, बाहर की परिस्थितियां ठीक करके सुखी और शांति चाहता है, सुखी और शांति जीवन बिताना चाहता है, वो कमजोर हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा। बच्चा सो रहा था, पिता घर आए, मुन्नु बब्बू, सोए हुए बच्चे को प्यार करते हुए पिता ने उस पर जो चादर ढकी थी डाल दी। पिता भोजन करने बैठे, माँ ने फिर देखा कि बच्चा सुकड़ा हुआ है, दूसरी चादर डाल दी। बाप भोजन करके फिर मुन्ना का मुखड़ा देखता है, भोजन करके रात को थोड़ा टहल लेना चाहिए, दूध पीकर 100 कदम तो चलना ही चाहिए, भोजन करके तुरंत नहीं सोना चाहिए। वो टहलने गया, टहल कर आया तो देखा कि बच्चा सुखड़ा है और तीसरी चादर भी उसकी माँ ने डाल दी। पिता समझदार था, तीनों चादरें उठा के फेंक दी। बच्चे की माँ ने कहा, ऐसा क्यों करते हो? बोले, जो पोष मास की ठंडी नहीं पचाता वो जेठ और आषाढ़ की गर्मी भी नहीं पचा सकेगा, वो कमजोर रह जाएगा। कुदरत ने प्रतिकूलताएं लाकर हमारा बल बढ़ाने की व्यवस्था की। ऐसे ही जो अपमान नहीं पचा सकता है वो मान भी नहीं पचा सकता, और जो मान नहीं पचा सकता वो अपमान से ज्यादा दुखी हो जाएगा। जीवन है तो मान भी है, अपमान भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है और जीवन भी है। मृत्यु में भी भगवान की कृपा को देखो और जीवन में भी भगवान की कृपा को देखो। एक होती है समीक्षा, दूसरी होती है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा उस बात की होती है जो नहीं है, फलाना आदमी अभी नहीं है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आएगा तब मिलेगा। तो भगवान की कृपा होगी तब दिखेगा नहीं, भगवान की कृपा तो सतत बरसती है, उसकी प्रतीक्षा नहीं की जाती, उसकी समीक्षा करो। भगवान विघ्न बाधा देकर भी हमारा बल और समता बढ़ाते, अनुकूलता देकर हमारी खुशी और उत्साह बढ़ाते। अनुकूलता आकर चली जाती है और खबर दे जाती कि तुम रहते हो, प्रतिकूलता और विघ्न आकर चले जाते और पाठ देते हैं कि तुम रहते हो, हम आने जाने वाले और तुम सदा रहने वाले। बचपन आया और चला गया, खबर दे गया कि तुम रहते हो। जवानी आई चली गई, खबर दे गई कि तुम रहते हो। बुढ़ापा आया और चला जाएगा, मौत आएगी और गुजर जाएगी, लेकिन मुझ आत्मा की मृत्यु नहीं होती। मरने के बाद भी स्वर्ग में, नरक में अथवा दूसरे जन्म में मैं रहता हूँ। तो मैं जहाँ से उठता है वह चैतन्य आत्मा है, इस शरीर का चैतन्य आत्मा जो है वो मैं, और सारे ब्रह्मांड में व्यापक जो चैतन्य आत्मा है वो परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा सजातीय है, आत्मा भी सत्य है तो परमात्मा भी सत्य है, आत्मा चेतन है तो परमात्मा भी चेतन है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो परमात्मा भी ज्ञान स्वरूप है। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूँ, सिर को पता नहीं मैं सिर हूँ, मन को पता नहीं मैं मन हूँ, लेकिन आपको पता है ये मेरा मन है। तो आपको दुखों में अप्रभावित रहने के लिए आकाश के तरफ देखे रहो, रोज थोड़ा अभ्यास करो, भगवान नाम जप का मन व्यापक हो जाएगा, दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे सुख का प्रभाव भी कम पड़ेगा। तो आप सुख और दुख के सिर पर पैर रख के परमात्मा के साथ एकाकार होने में सफल हो जाओगे। गुरु मंत्र का प्रीति पूर्वक जप करने से आपके हृदय में रस बढ़ेगा, और उस रस में थोड़ी देर पड़े रहो, शांत हो जाओ, बैठे रहो। कल सुबह आप एक प्रयोग करना, नींद में से उठो तो अपने ललाट पर उंगली लगा देना, उंगली लगा कर ललाट पर जहां तिलक किया लाल, सारी ओज चेतना को सार भाग को यहाँ ले आओ। इसको विज्ञानी पिनियल ग्रंथि कहते हैं, अपन इसको शिव नेत्र कहते हैं। जो भी कोई शुभ कर्म करता है तो ललाट पर तिलक किए बिना शुभ कर्म का उसका प्रभाव बहुत साधारण पड़ता है, और शुभ कर्म के पहले तिलक करके फिर शुभ कर्म आरंभ करे तो उसके शुभ कर्म विशेष सुखदायी प्रभावशाली होते हैं। भगवान कहते हैं कि शुभ और अशुभ में, सुख और दुख में, सफलता और विफलता में सतबुद्धि मत करो, मुझ सत्स्वरूप आत्मा के तरफ अपनी मति लगाओ। तो जो मेरा नाम प्रीति पूर्वक भजता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि तो बहुत लोगों के पास है, मच्छर और खटमल और कीड़ी और मकोड़ा के पास भी बुद्धि है, लेकिन बुद्धि योग तो भगवान के प्यारे भक्तों के पास होता है। वही तुम्हारा आत्मा तीन प्रकार की चेतना में विभाजित व्यवहार में किया जाता है। जब आप शरीर को मैं मानते हैं और संसार को मेरा मानते हैं, थोड़े थोड़े दुख और सुख में तो आप दुखी सुखी हो जाते हैं, तो आप देह युक्त चेतन है, साधारण जीव है। जैसे कुत्ते ने जलेबी देखा और पूंछ हिलाया, खुश हो गया, बाँछें खिल गई, और डंडा देखा तो पूंछ दब गई दोनों पैरों के बीच, तो आपने उस साधारण पशु से कोई ज़्यादा तरक्की नहीं की कि सुख सुविधा देखकर आप खुश हो गए और दुख देखकर आप घबरा गए। तो आप साधारण जीव है, साधारण आत्मा है। अगर अंतःकरण युक्त सूझबूझ सत्संग और जप के धन से युक्त हो गए तो आप प्रतिभासिक चेतना में आ गए। साधारण चेतना, प्रतिभासिक चेतना, दुख आएगा आप सावधान हो गए, सुख आएगा आप देखते हैं कि ठीक है, ऐसी चिंता आएगी आप उससे ज्यादा जुड़े नहीं लेकिन निर्लेप भी नहीं रहे, आप प्रतिभासिक चेतना है। अंतःकरण और शरीर दोनों के बीच आपकी यात्रा चल रही, देह और अंतःकरण से आप जुड़े। अगर आप सत्संग करके जप ध्यान करके आप निष्ठा बढ़ा देते हैं तो आप परमार्थिक चैतन्य आत्मा में साक्षी भाव में स्थित हो जाते हैं। फिर आपको बाहर के प्रलोभन अथवा बाहर का भय इतना दबा नहीं सकेगा। तो आपके जीवन की कमाई का फल यह है कि आप बाहर के कोई भी प्रलोभन आए अथवा भय आए, आप हेम खेम बचते चले गए तो आप ईश्वर के करीब हो। एक आदमी मंदिर में जाता है और जरा जरा बात में घबराता है तो उसका मंदिर जाना इतना सफल नहीं हुआ। दूसरा आदमी मंदिर में कभी कभार जाता है लेकिन हृदय मंदिर में सत्संग के द्वारा पहुंच गया है, सुख दुख में इतना नहीं हिलता है, तो मंदिर जाने वाले की अपेक्षा वो अंतर के मंदिर में पहुंचा। मंदिर जाना अच्छा है लेकिन हृदय मंदिर में आना बहुत जरूरी, समता के मंदिर में आना बहुत जरूरी। जिसके जीवन में दुख और बाधा और विक्षेप आते हो, घबराहट आती हो, तो गुरु भगवान अथवा आकाश की तरफ टिकटिकी लगा कर देखे, इससे विक्षेप विघ्न बाधा का प्रभाव मन से हट जाएगा, मन सद जाएगा। हवामान में तो डस्ट बहुत है, धूल, शुद्ध हवामान जहां मिले नाक से श्वास लिए सुबह और मुंह से छोड़े, गर्दन को पीछे करके नाक से श्वास लिए और मुंह से छोड़े। कितना भी चिंतित दुखी आदमी होगा, दुख और विक्षेप शमन होगा, खुशी प्रसन्नता और साधारण जीव कुछ प्रतिभासिक जीव की यात्रा में पहुंच सकेगा। अपने से कभी पूछो क्या मैं ये शरीर हूँ? चुप बैठे रहो, शरीर नहीं था उसके पहले भी तो मैं था, शरीर मर जाएगा उसके बाद भी तुम्हें रहूंगा, तुम्हें शरीर हूं ये बात तो सच नहीं हुई, तुम्हें क्या हूं, आखिर में क्या हूं, क्या मैं शरीर हूं? चुप बैठे रहो, अगर उत्तम साधना करना चाहो तो फिर थोड़े दिन में आप ये मिला दो, अहम सह सोहम, मैं ही इस जगत का व्यापक आत्मा और अंतःकरण जीवात्मा होकर बैठा हूं, सब मुझ में, सब में मेरा में, उत्तम भावना उससे तद्रूपता करो, बड़ा लाभ होगा। आप जैसा चाहते आपका मन वहां पर बार बार जाए, और मंत्र भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, और आजकल तो कब किसका क्या बम ब्लास्टिंग कोई कर देता है, कब आतंकी कुछ कर देते, कब एक्सीडेंट हो जाता है, तो अथर्ववेद में ऋग्वेद में एक बड़ा भारी मंत्र आया, उस मंत्र का एक बार उच्चारण करके घर से जाए तो कितने भी विघ्न बाधा अथवा एक्सीडेंट की संभावना होगी आपकी सुरक्षा हो जाएगी। मंत्र है ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। इस प्रकार का एक बार केवल जब आपके एक्सीडेंटों से रक्षा करेगा, आपदाओं से रक्षा करेगा। मैं मंत्र फिर से बोलता हूँ, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् व्यबंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। अगर इसमें ओम हुम जुम स्व होम भूर्भुवस्व ये आगे मिला दें, और स्व भूर भू ओम स झुम, तो उसका प्रभाव कुछ और निराला होता है। लेकिन आप खाली जो अभी बताया उतना ही करेंगे, शिव भक्त तो जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र है। एक इंजीनियर था और उसको कोई रोग ने पकड़ा, डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए और घर ले जाओ बस, अब एक दो घंटे का मेहमान है, कुटुंबी एक टक भगवान के चित्र के सामने बैठ के प्रार्थना करते और फिर महामृत्युंजय का जप चालू किया, और वो 20 साल हो गए अभी तक वो जिंदा है, मुझे बताया गया उसके विषय।